أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. اسی کی تعریف، اسی کا دیا ہوا یہ ایک تحفہ ہے جو ہم علم کی صورت میں لیتے اور دیتے ہیں. دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا اہل بنائے، ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو سن رہے ہیں اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں. آج بہت ہی شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ حسن المسلم سیریز جو ہماری یہاں چلی اس کا آخری دن ہے. اس ترتیب کے ساتھ، ورنہ تو یہ سلسلے چلتے ہی رہیں گے، خوشی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کیا اللہ نے پورا کرا دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ وما توفیق الا باللہ. ہم میں سے کسی کی یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم کوئی نیکی شروع کریں، کہاں پھر اس کو پورا کریں. بہت سارے لوگ بہت ساری ادھوری نیکیوں کے ساتھ قیامت کے دن ہوں گے اور وہ نیکیاں پورا ہونے کے لیے منتظر رہیں گی. کوئی بھی کام شروع کریں، استقامت کے درجے پہ اس کو لیں اور اس کے لیے مستقل اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اس کے ساتھ معاملے کو بہتر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جتنا زیادہ آپ اور میں اپنے لیے اس چیز کو اہم سمجھیں گے، رستے میں مشکلات بھی آتی ہیں، کئی جگہ چھوٹی موٹی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، تو یہ تو ایک ایمان والے کا بہت ہی پیارا سا تحفہ ہوتا ہے کہ اللہ تیرے لیے میں نے اپنے معمول میں کچھ تبدیلی کی، کچھ اپنے سونے جاگنے کے وقت میں کی. کبھی کوئی مہمان آ جاتا ہے، ہم معذرت کر لیتے ہیں کہ آپ اپنی ہیلپ کیجئے، ہم تھوڑی سی کمٹمنٹ نبھا کر آتے ہیں. تو یہ تو چھوٹی چھوٹی جذباتی قربانی ہے. کبھی ہو سکتا ہے گھر والوں کو بھی ضرورت ہو، لیکن ان کی مرضی کو پیچھے کر کے انسان اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے. تو یہی چھوٹی بڑی چیزیں کل اللہ کے ہاں قبول ہوں گی. آج ہم شروع کریں گے سفر کی دعاؤں میں سے، مقیم کی مسافر کے لیے دعائیں. اس ٹاپک سے آئیے شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. حسن المسلم، ہم اس میں سے حج اور عمرہ اور گھر سے نکلنے یعنی سفر کی دعائیں کر رہے ہیں، کیونکہ بہترین سفر حج اور عمرے کا سفر ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی انسان جب بھی اپنے گھر سے نکلے کسی بھی کام کے لیے، حلال اور جائز کام کرتا ہے، تو وہ نکلنا بھی جب دعاؤں کے ساتھ ہوگا تو اللہ کی رحمت سے اس میں پھر ہمارے لیے اجر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کا اجر ضائع نہیں کرتے. تو ہم اس میں سے آج جو دعا سب سے پہلے کریں گے وہ کیا ہے؟ مقیم کی دعا مسافر کے لیے. اللہ نے پوری زندگی ہی ایک خوبصورت دعا نامہ بنا دیا ایمان والے کے لیے. مومن کا کوئی کام بلا مقصد نہیں ہوتا، اور جب کسی کام کا، کسی سفر کا آغاز دعاؤں سے ہو تو گویا کہ یہ اس سفر کے اندر سے نافرمانیاں اور گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتا ہے. چند سیکنڈ کے لیے ہم سب خود سے پوچھیں کہ جب بھی گھر سے میری گاڑی نکلتی ہے تو کس لیے نکلتی ہے؟ جب بھی گاڑی میں بیٹھتی ہوں، یا گاڑی سے مراد پھر ہر سواری، آج کامنلی یوز تو گاڑی ہی ہے، کس لیے نکلتی ہوں؟ بس، ٹرین، گاڑی، اور گاڑی بھی بڑی گاڑی، فراری، لینڈ کروزر، روڈ رائزر اور نہ جانے کیا کچھ. کیا واقعی جب میں نکلتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے جو اس نے میرے قابو میں کر دی؟ اور کیا مجھے اس وقت احساس ہوتا ہے کہ میں نے واقعی اب اس سفر میں اپنے لیے نیکیاں کمانی ہیں؟ اور باہمی رابطوں کا کتنا پیارا ذریعہ ہے نا دعا. مثلاً اس وقت جو دعا ہم شروع کرنے لگے ہیں وہ کیا ہے؟ مقیم کی مسافر کے لیے دعا. ہم خود سفر پہ نکلیں نہ نکلیں، گھر سے جائیں کم سے کم بے شک، لیکن گھر میں سے کوئی نہ کوئی جانے ہی لگتا ہے نا. تو جب گھر سے نکلا تو وہ مسافر ہی ہوا نا، چاہے سفر قریب کا ہو یا دور کا ہو. تو اب آج آپ وہ دعا سیکھیں گے جو کل سے آپ نے انشاءاللہ اپنے شوہر کو گھر سے نکلتے وقت، اپنے بچوں کو، یا جو جدھر سے بھی کوئی آئے کوئی جائے، آپ نے اس سوچ کے ساتھ یہ دعا ان کو دینی ہے. نمبر ایک، سنت، اجر. دوسری بات، آپس میں محبت بڑھے گی. اور اگر ان کو نہ بھی اس کا ترجمہ سمجھ آئے تو پھر انشاءاللہ وہ بھی بات میں بتانا ہے. تو ہمارا گھر بڑے غیر محسوس طریقے سے ایک اسلامی گھرانہ بنتا جائے گا. دعائیں پڑھنے میں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ آپ دیکھیں گے ابھی کہ دعاؤں میں تو ساری خیر ہے. आज सिक्योरिटी का लफ्ज़ बहुत कॉमन है, इंश्योरेंस का लफ्ज़ बहुत कॉमन है, टेक योर सेल्फ का लफ्ज़ बहुत कॉमन है, हेल्प योर सेल्फ बिफोर हेल्पिंग अदर्स का लफ्ज़ बहुत अहम है ना। बस इन्हीं में से एक लफ्ज़ है, दुआएं आपकी मेरी इंश्योरेंस है, हमारी प्रोटेक्शन है। सीट बेल्ट बांधने का कानून है, ना बांधें तो 700-800 क्रोन देने पड़ेंगे। तो आप और मैं जितना इन छोटी छोटी चीज़ों पे गौर करके इस पे अमल करते हैं कि चलिए अच्छी बात है ना। एक जुमला और भी बहुत बोलते हैं, सेफ्टी फर्स्ट, राइट? तो सेफ्टी फर्स्ट क्या है? दुआ फर्स्ट। अपनी दुआओं को सेफ्टी का ज़रिया बनाएं। एक मुसलमान को अल्लाह और उसके रसूल की बात पर इतना ही यकीन होता है जितना कि उसको अपने होने का यकीन है। तो दूसरे जो कहते हैं वो भी ठीक होगा, लेकिन जो बात अल्लाह और उसके रसूल के ज़रिए से हमें पता चल जाएगी उसके गलत होने में तो किसी को शक हो ही नहीं सकता। तो वो दुआ जब कोई आपके घर से कहीं जाने लगे, गोया के घर से किसी का जाना या थोड़ी देर के लिए आपसे जुदा होना भी एक दुआओं का मौका बन गया, आप उसके अंदर अपने आप को अगले के साथ खैरख्वाही का मौका बनाते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें दिलों में मोहब्बत डालती हैं। अमूमन मेहमान मुश्किल लगते हैं, तो चलिए अब सारी बात के साथ दुआ सीखते हैं। अस्तौदेउल्लाह दीनका व अमानतका व ख़वातीमा अमलिका। अस्तौदेउल्लाह दीनका व अमानतका व ख़वातीमा अमलिक। मैं तुम्हारे दीन, तुम्हारी अमानत और तुम्हारे आखिरी अमल अल्लाह के सपुर्द करता हूँ। ये रिवायत है, नंबर नोट कीजिएगा, तिर्मिज़ी की रिवायत 3443। क्योंकि रेफरेंस के बग़ैर तो हम इस तौदे को कुछ और पढ़ दें, अस्तौद को कुछ और पढ़ दें और कुछ और भी कह सकते हैं, राइट? तो बिल्कुल इसी तरह से दुआओं में कोशिश करनी है कि अल्फाज वही हों जो के सिखाए गए। कई जगह इस तौदे भी आता है, यहाँ अस तौदेउल्लाह है, इस लफ्ज़ को जहन में रखिएगा, ठीक है? तो जो रिवायत रेफरेंस के साथ दी जाती है ना, फिर उसके ही अल्फाज पे स्टिक ऑन रहना चाहिए। कभी कभी दोनों की गुंजाइश भी होती है, किसी एक जगह एक लफ्ज़ है तो किसी जगह दूसरा कोई लफ्ज़ होता है। अब इस तौद या अस तौदेउल्लाह है के लफ्ज़ में कोई उर्दू का लफ्ज़ छुपा हुआ है? हमारे यहाँ बोलते हैं कुछ अलविदा जी, और अलविदाई, विदा करना, एक कल्चर में बेटी की रुख्सती को विदा कहते हैं ना, तो अलविदा विदा ये सारे वही लफ्ज़ हैं। तो क्या पता चला कि आप किसी को विदा करते हैं, और असल में तो इसमें किसी के सुपुर्द करना होता है। हम जब कहते हैं कि हम आपको हवाले करते हैं अल्लाह के, हमारे यहाँ इसका एक नेमुल बदल भी है, खुदा हाफिज़। और शुरू से हम क्या देखते थे कि आते हुए कहते हैं अस्सलाम वालेकुम और किसी से जुदा होते हुए कहते हैं खुदा हाफिज़। असल में जो लफ्ज़ खुदा हाफिज़ है ना, वही है अस्तौदुल्लाह। हाफिज़ कहते हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह हाफिज़ है आपका, और विदा में भी वही सेंस है। ये अलग बात है कि अल्लाह हाफिज़ कहने वाले बाज़ दफ़ा कुछ जामिन बांध देते हैं, कोई हाथों में धागे बांध दिए जाते हैं, कुछ और इसी किस्म की चीज़ें की जाती हैं। तो मोमिन का भरोसा है इस बात पे कि वो अल्लाह के हवाले होता है। किस किस चीज़ को अल्लाह के हवाले किया? दीन का, तेरा दीन, व अमानत का, तुम्हारी अमानत, व ख़वाती मामलिक, और तुम्हारे आखिरी अमल को। यानी सफ़र में इंसान ज़िंदगी की निस्बत मौत के करीब होता है, इसमें कोई शक नहीं है। जो फितने सफ़र के नाम पे हैं वो घर में नहीं हैं। फितनों के दौर में तो घरों में छुप के बैठ जाना ही एक पसंदीदा अमल है, लेकिन जब बाहर की दुनिया में कहीं हुसन के फितने, कहीं चोरों डाकों के फितने, कहीं जरासीम किसी एक से दूसरे को लगने के फितने, तो आप ये दुआ मांग के घर से निकला करें, और कोई जाए तो उसको ये दुआ दिया करे कि मैंने अल्लाह के हवाले किया, तुझे सुपुर्द कर दिया अल्लाह के, तुझे भी, तेरे दीन को भी। दीन अच्छा रहे, क्योंकि बाहर दीन का बहुत बिगाड़ है आज के दौर में। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुर्बे कियामत वही शख्स अपना दीन बचा सकेगा जो जंगलों में चला जाए, जो पहाड़ों पे चला जाए। यानी इंसानी बस्तियों में इतने फितने होंगे कि अल्लाह की बना, और इस साल से शुरू से लेके अभी तक ये चीज़ खुल के सामने आ रही है कि अब दिन ब दिन आगे वो फितनों का दरवाज़ा खुलता ही जा रहा है, जो पहले ढका छुपा था अब वो खुल के बाहर आ रहा है। तो अल्लाह ताला हमें अपनी आजमाइशों से बचाए। फिर अमानत का, तुम्हारी अमानत, अमानतें क्या होती हैं? मसलन कोई किसी को दे के जाता है, सफ़र में जाते हैं, कुछ ज़्यादा सफ़र साथ होता है, सफ़र का ख़र्चा, कोई खाना पीना, कोई कीमती डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो आप अगले को कहते हैं कि जो अमानतें हैं तुम्हारी वो भी अल्लाह के सुपुर्द। मतलब एक तो तुम्हारी जान, फिर तुम्हारा दीन, फिर तुम्हारे पास जो रास्ते के जमा खर्च के लिए है उसको भी अल्लाह के हवाले करते हैं। वह खवाती मामलिक, और अल्लाह ना करे इस सफ़र में तुम्हारी जान चली जाए तो तुम्हारा खात्मा बिल खैर हो। क्या खूबसूरत दुआ है। इस सोच के साथ देंगे तो जिसको देंगे उसको भी मोहब्बत आएगी। शर्त यह है कि आपने उसको ये दुआ सिखाई हो, उसको पता हो ये दुआ, और आप दे रहे हैं तो आप भी उस शऊर से दें। थोड़ा सा वक्त हो तो जाने से थोड़ी देर पहले ही बैठकर आखिरी वर्ड्स जो होते हैं, लास्ट वर्ड, या जिसको हमारे यहाँ गेट मीटिंग भी कहते हैं, तो उस वक्त ये बातें थोड़ी सी डिस्कस कर लेनी चाहिए। तो बहुत खुश होंगे वो लोग जिनको आप ये दुआ देंगे। तो आइए इसको हम सीखेंगे इस शौरी के साथ। अस्तौदेउल्लाह दीनक व अमानतक व ख़वातीम अमलिक। जी शुरू कीजिए, सीखने के अंदाज़ से करें, क्योंकि अभी तो हम सीखने लगे ना मुकीम की दुआ, मुसाफिर के लिए। आगे इंशाल्लाह मुसाफिर की भी दुआ सीखेंगे, तो कभी कभी ये दुआएं फिर आपस में मिलने लगती हैं। तो एक पक्की याद कर लीजिए, फिर जो याद नहीं होगी वो दूसरी होगी। शुरू करते हैं। जी एक बार फिर इसको ऐसे पढ़िए कि 1 2 3 4, चार चीज़ों पे रुकिए। पहली पे रुकिए, आप सुनने वाले चाहें तो इधर कॉमा लगा लें ताकि आपको पता चले कि एक ये चीज़ है फिर दूसरी है। इस तरह भी चीज़ याद आसानी से होती है। आमीन। चलिए ये दुआ निस्बतन आसान है, इसमें भी आपको बहुत ही प्यारी फीलिंग्स आई हैं। एक और दुआ भी है, कभी एक मांग लें कभी दूसरी मांग लें। ज़व्वदकल्लाहु तक्वा व गफ़र ज़म्बक व यस्सर लकल खैरा हैसु मा कुंता। अल्लाह तुम्हें तकवा का ज़ादे राह अता फरमाए, तुम्हारे गुनाह बख्श दे, और तुम जहाँ भी हो तुम्हारे लिए भलाई आसान कर दे। ज़व्वदकल्लाहु तक्वा व गफ़र ज़म्बका व यस्सर लकल खैर हैसु मा कुंता। आप देखिए कि इसमें सबसे पहली चीज़ तकवा का ज़ादे राह अता फरमाए। मुराद क्या है इसमें कि सफ़र में कुछ सामान साथ रखा जाए तो उसको ज़ाद कहते हैं। ज़ाद, ज़ादे राह क्या होता है? रास्ते का सामान, ठीक है। जिस तरह सफ़र में जाते हुए लोग कुछ खाना पैक कर लेते, कुछ अपने रास्ते में ज़रूरत की चीज़ें रख लेते, कुछ कीमती डॉक्यूमेंट्स रख लेते, कुछ करेंसी रख लेते, इसी तरह कुछ तकवा भी रख लीजिए। वजह सोचिए ज़रा। तकवा इज़ अ रिज़र्व करेंसी। वक्त पड़ने पे ये मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में आती है। देखिए अमूमन हज या उम्रे पे भी जाते हुए, या अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में या दुनिया में कहीं भी सफ़र करने लगे लोग, तो उसमें वो कुछ मनी जो साथ रखते हैं वो डॉलर्स की शक्ल में रखते हैं, क्योंकि अमूमन डॉलर जो है वो एक यूनिवर्सल करेंसी समझा जाता है कि जहाँ जाएंगे डॉलर्स को तो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। हो सकता है नॉर्वेजियन क्रोन हर मुल्क में ना चले, इसी तरह पाकिस्तानी रुपीस भी ना चलें लेकिन डॉलर चल जाता है। बिल्कुल इसी तरह से इस सफ़र में तकवा को रख लीजिए, यही वक्त पड़ने पे सब्र में, शुक्र में, कनात में और अल्लाह की नाफरमानी से बचने में ढलेगा, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जिनको एक इंसान जब अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है, जब इसकी जगह बनाता है ना, तो इसके बाद उसको बहुत सारी जगहों पे फैसला करना आसान हो जाता है। हम बहुत सारी चीज़ों में उलझते रहते हैं, ये ठीक है कि नहीं, ये गलत तो नहीं, ये सही है कि नहीं, लेकिन जब आप अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई बातों पे गौर व फिक्र करते हैं ना, तो आपको फिर सही और गलत का फ़र्क भी पता चलने लगता है। तो तकवा इसलिए रखना है कि सफ़र में कहीं बहक ना जाए, तकवा इसलिए रखना है कि रास्ते में कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल हो, और इसी तरह से कुछ ऐसी चीज़ें अपने साथ रखने की ज़रूरत होती है कि जिनको लेने के बाद अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी मुश्किल आ गई जिस मुश्किल में आप और मैं अपने आप को इन सारी चीज़ों के अंदर लेकर देखें, तो फिर आपको इसकी अहमियत का समझ आ जाएगी। फिर आप देखिए कि गफ़ारा ज़म्बक, तुम्हारे गुनाह बख्श दे। सफ़र में अगर कोई गुनाह हुआ या इससे आगे पीछे कुछ हुआ, अल्लाह ताला सफ़र को गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया भी बनाता है। मुसाफिर की दुआएं कबूल होती हैं, और आप सब जानते हैं कि मुसाफिर जो होते हैं वो इन सारी चीज़ों को किस तरीके से ले सकते हैं। उस वक्त को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कीजिए, सफ़र में दुआएं मांगिए, बख्शिश की फ़िक्र होना मज़ीद गुनाहगार होने से भी बचाता है। अमूमन सफ़र में मूड बदलने लगते हैं, कभी कभी अगर ख़ास तौर पे कोई सैर का सफ़र हो, दोस्तों के साथ का सफ़र हो या कुछ इसी किस्म की चीज़ हो, तो लोग बहुत ही अपने आप को दूसरी तरफ ले जाते हैं और चलो मस्ती करें, चलो शोखी है, चलो कुछ भी, चलो ये भी और जो वो भी, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, वो बाज़ दफ़ा इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे असरात छोड़ देती हैं जो बाद में गिल्ट का ज़रिया बनते हैं। तो सफ़र को मज़ीद गुनाहों के करने की बजाय पिछले गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनाना है। फिर आप देखिए, वयस्सर लकल खैर, तुम जहाँ भी हो तुम्हारे लिए खैर आसान हो, हैसु मा कुंता। आप सफ़र में इंसान बिला मकसद नहीं जाता, इस्लाम में बिला वजह सफ़र करना पसंदीदा नहीं है। तो अल्लाह ताला इसमें क्या कहते हैं कि जिस काम के लिए जा रहे हो, अल्लाह ताला इसको जल्दी से तुम्हें फारिग करे, तुम अपने काम करो और वापस आ जाओ। और जितना ज़्यादा आप इन सारी चीज़ों को अपने ऊपर लेते जाएंगे, आप देखेंगे कि आप एक सेकंड एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे, और वॉन्डर ब्लाइंडली की बजाय सफ़र में इंसान को हमेशा जल्दी से जल्दी घर वापस आने की फ़िक्र करनी चाहिए, और जिस काम के लिए गए थे वो काम करके आना है। इस शऊर के साथ ज़रा सा इस दुआ को याद करते हैं चंद मरतबा, फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे।
زودك الله التقوى، زودك الله التقوى، وغفر ذنبك، وغفر ذنبك، ويسر لك الخير حيثما
अब देखिए कि इसमें हमने दो दुआएं सीख ली मुसाफिर के लिए जो जा रहा है। एक तरफ आपने उसको अल्लाह के हवाले किया, उसके दीन को, उसके अमान को, उसके अमाल के खात्मे को, और दूसरी तरफ आपने उनके लिए तकवा की दुआ की, गुनाहों की माफ़ी की दुआ की, और फिर उनके मामलात को आसान करके खैर मिलने की। जब इतनी मोहब्बतों से कोई रुख्सत करेगा तो आप देखिए कि आपस में ताल्लुकात कितने खूबसूरत होंगे। तो असल में ह्यूमन रिलेशन बिल्ड करने वाली ये दुआएं हैं। अल्लाह ताला हमें इस चीज़ के ऊपर तैयार करते हैं कि हम बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को लेकर चलें, और आप देखेंगे कि मोहब्बतें बढ़ाइए, हमारे दिलों में उल्फत हो भी ना तो हम इजहार नहीं करते, लिए दिए रहते हैं। अल्लाह के नबी को अगर किसी से मोहब्बत महसूस होती थी तो आप उसका खुल के इजहार करते थे, किसी की अगर कोई बात अच्छी नहीं लगती थी उसको अच्छे तरीके से समझाते थे। तो बहरहाल आपसे मुसाफिरों के लिए आपने ये दुआएं मांगनी है, और याद कर लीजिए, नहीं है तो किताब खोल के खड़े हो जाएं।